भगवान एक ऐसे वैद्य जो कि मरीज की बीमारी, बीमारी के लक्षण, डायग्नोसिस जिसको कहेंगे, इन श्लोकों के द्वारा वो कर कर दे रहे हैं। और न केवल बीमारी बीमारी के लक्षण अपितु उसके साथ साथ औषधि और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये सब प्रस्तुत कर रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा। तो आज हम लेंगे श्लोक क्रमांक 22, यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो जैसे पिछले श्लोक में भी भगवान ने उस श्लोक का अंत किया था, कैसे कर्म बंधन से छुटकारा एक पूर्ण ज्ञानी प्राप्त कर सकता है और अपने आशाओं, भौतिक आशाओं से परे जाते हुए, अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए, जो स्वयं और पराई की संपत्ति है उस पर स्वामित्व का भाव न रखते हुए, केवल शरीर यापन के लिए, शरीर यात्रा के लिए जो अपना जीवन जीता है, कैसे वो इन सारे कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है, ये पिछला श्लोक। तो आज के श्लोक के संदर्भ में हमारी चर्चा के विषय इस प्रकार के रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध। सबसे पहले भगवान ने आज के श्लोक में ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से भगवान ने संतुष्टि इस शब्द को और लाभ, ये दोनों शब्दों को बखूबी इस्तेमाल किया है एक बहुत ही विशेष सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए। द्वंद से ऊपर कैसे उठा जाए, ईर्ष्या से रहित जीवन का आनंद सफलता एवं असफलता में समान कैसे रहा जाए, और अंततः कर्म बंधन से छुटकारा। तो यदि एक स्लाइड में पिछले दफा जो हमने लिया था, ये पूरा श्लोक, पिछले बार का श्लोक 21वां श्लोक, तो कैसे निराश नहीं होना है, अपितु जो इस भौतिक संसार की आशाएं हैं उन आशाओं के परे कैसे जाना है। और जब कोई जाता है तब वो यत चित्तात्मा, अपने चित्त को वो जीत लेता है। यहां पर चित्त मानसिक भाव है, यदि इसको आप इमोशन कहो, यदि इसे आप एक डिसीजन कहो, उसकी हम चर्चा करेंगे। सैटिस्फैक्शन इज नॉट जस्ट एन इमोशन, सैटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अ डिसीजन। तो शरीर और मन, तो मानो यदि पिछला श्लोक सुनने के पश्चात अर्जुन ने यह प्रश्न भगवान से पूछा कि भगवान, आपने केवल शरीर आत्मा को एक साथ रहते हुए कैसे जीवन जीना है यह बता दिया, परंतु इस शरीर के अंदर और आत्मा से, शरीर और आत्मा के बीच में ये जो हमारा मन है, ये जो सूक्ष्म शरीर है जो कि इतनी इच्छाओं को पैदा करता रहता है और इतने उसके अंदर भावनाएं होती हैं, और वो भी इस शरीर के कर्म करते हुए अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, इन सब से जो ये मन सूक्ष्म शरीर गुजरता है तो उसका क्या किया जाए। इसलिए ये आज के श्लोक में भगवान ने शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि के लाभ, पिछले श्लोक में शारीरिक संतुष्टि के लाभ, यहां पर शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि के लाभ। तो आइए शुरू करते हैं आज के श्लोक का जो पहला शब्द है, यदृच्छा। ऐसी वस्तु जो बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाए, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवद गीता में ही ये बात कही गई है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कि एक कर्म एक क्षण भी नहीं जाता जब हम बिना कर्म किए रह सकते हैं और बिना कर्म किए कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। तो यदि बिना कर्म किए रह नहीं सकते और बिना कर्म किए कुछ हासिल नहीं कर सकते तो फिर ये यदृच्छा शब्द कैसे समझा जाए, जिसके अंदर भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु या ऐसी वस्तुएं जो बिना किसी प्रयास के मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, हमने कोई उसके लिए अथक प्रयास या साधारण सा भी प्रयास उसके लिए कभी नहीं किया और हमारे पास वो मौजूद है, या हम यही कहें कि हम उसके ओनर हैं। सबसे पहले तो ये श्वास लेने की प्रक्रिया, आपको याद है हमारे एक सेटिंग में हमने ये प्रश्न पूछा था, ये श्वास क्या मेरी है या मेरे लिए है। अब हम सब यहां पर, हवा जो है वो मौजूद है सबके लिए, हवा सबके लिए मौजूद है, परंतु हम व्यक्तिगत रूप से श्वास ले रहे हैं, है कि नहीं। अब पैदा होते ही ये श्वास की प्रक्रिया ये प्रारंभ हो जाती, जब गर्भ में भी शिशु होता है वहां पर भी उसकी श्वास की प्रक्रिया चालू हो जाती। अब ईमानदारी से बताइए कि कितनी बार हम ये श्वास जो लेते रहते हैं, श्वास लेते हुए हमको बहुत कुछ अथक प्रयास करना पड़ता है। जब कोई बीमार होता है और उसे ब्रेथलेसनेस होता है या फिर दमे की बीमारी, जो कुछ आप कहो, तब उसे पता चलता है कि ये श्वास लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। परंतु जब हम इस अवस्था में यहां पर अभी बैठे हुए हैं, पिछले एक घंटे से आप लोग बैठे हुए होंगे, कई आधे घंटे से बैठे हुए होंगे, आप में से कितनों ने ये सोचा, अरे यार सांस लेनी होगी, हा? मैं जस्ट दो तीन दिन पहले मेरा एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने गया तो डॉक्टर वहां पर जो थे उनसे मैं पूछ रहा था कि ये जो हमारे शरीर का ढांचा है और इस ढांचे के अंदर जो जो अलग अलग उपकरण फिट हैं, कंपोनेंट्स फिट हैं, वो अपने आप में एक अजूबा है। तो उन्होंने ये, मैंने पॉइंट क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु जी श्वास, हम जो श्वास लेते हैं जिसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, ये बात अलग है जब कोई योग करने जा रहा है प्राणायाम के लिए, उस समय बताया जाता है। जब किसी योग शिविर में आप जाते हैं, रामदेव बाबा जी जब कहते हैं कि सांस को बाहर छोड़िए, इसका मतलब ये नहीं है कि ससुराल वाली सांस को बाहर छोड़ के आइए, वो याद दिलाना पड़ता है कि ये जो श्वास है इसको आप दीर्घ श्वास लीजिए, अब हल्के से छोड़िए। तो जब ये डॉक्टर मुझे बता रहे थे, अब मैं आपको यदि कहूं एक मिनट के लिए आप लोग सब आंख बंद कर दीर्घ श्वास लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो बिना प्रयास के यदृच्छा, बिना प्रयास के हम लोगों को दी गई है ये चीज, ये कितनी महत्वपूर्ण है। आंख बंद कीजिए, घबराइए मत, मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आंख खोलते हुए आप लोग दीर्घ श्वास लीजिए। जैसे हम ये दीर्घ श्वास लेते हैं तो कुछ अनुभव हो रहा है, जब कॉन्शियसली आप लेते हैं तब अनुभव होता है कि हाँ आप कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर मुझे बोल रहे थे वो पूरा क्या उसका सीक्वेंस है, जो कि हमें एक साधारण सी प्रक्रिया लगती है जिसके विषय में कभी हम सोचते भी नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और सीक्वेंस होता है। तो जो भी मुझे याद है बोलने की कोशिश करूंगा, जो यहां पर डॉक्टर है ठीक कर दे हमें। तो जो डायफ्राम होता है, जब हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं श्वास लेने की हमारे नासिका से, तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे जाता है, हमारे चेस्ट कैविटी से वो नीचे जाता है। क्यों नीचे जाता है? उसके अंदर एक कंस्ट्रिक्शन पैदा होता है वो श्वास लेने की वजह से, और वो नीचे जाता है ताकि हमारे चेस्ट कैविटी में जगह पैदा हो लंग्स के लिए, लंग को और फूलने के लिए, लंग्स जिसे फेफड़े हम कहते हैं उसको और फूलने के लिए जगह पैदा हो। तो वो डायफ्राम नीचे जाता है और हमारे चेस्ट कैविटी वो एक्सपैंड होती है, उसके अंदर लंग्स के अंदर जब हवा जाती है नासिका के द्वारा, और वो भी ब्रोंकाइल ट्यूब से, जो विंड पाइप है वहां से धीरे धीरे अब वो हवा अंदर जा रही है, और फिर वो जो उसका एंड है वो है एयर सैक्स, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वहां पर वो जो हवा है वो पहुंची है। अब उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना है। तो जो एयर सैक्स है, ये एल्वियोलाई जो है, ये एक जैसे कि आप थैली बोलो, एयर सैक्स मतलब थैली के समान है। तो उस थैली की जो दीवारें हैं बहुत महीम होती, बहुत पतली दीवारें होती है, थिन वॉल्स, और वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है, और फिर जो पल्मोनरी वेन है वो उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे हृदय के लेफ्ट साइड में लेके जाता है, वहां से लेफ्ट साइड से फिर पूरे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट के द्वारा, और ये सब अभी हो रहा है। कुछ प्रयास किया आपने समझने का? तो प्रयास किया, अब देखो। अच्छा, इसके दौरान एक चीज मैं भूल गया, थोड़ा बहुत जो सुना तो याद आया, वो बता रहे हैं। तो उसके दौरान जब वो ऑक्सीजन एयर सैक से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है, हवा में जो ऑक्सीजन है ब्लड स्ट्रीम में जब ट्रांसफर होता है, तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से उस एयर सैक में जाता है। मान लो कि ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि अब आप बाहर भी तो निकालेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ट्रांसफर होता है, और फिर जो आप एक्सहेल कर रहे हैं हवा बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। और ये प्रक्रिया जब हम सोए हैं, हमें कुछ पता नहीं, पूरा बेहोश है, उस समय यह प्रक्रिया चल रही है। तो यदि पूछा जाए कि सोते समय जो हम श्वास अंदर बाहर ले रहे हैं, ये जो पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया, ये पूरा सीक्वेंस एक श्वास का, और कितने ऐसे श्वास हम अब तक लिए हैं, अभी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे, और ये तो एक हमारे शरीर की प्रक्रिया है, जो कि हम जिसको कहते हैं कि कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली, एफर्टलेसली करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है यदृच्छा, की श्वास लेने की प्रक्रिया, फिर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये आंख, ये जिह्वा, ये त्वचा, ये कान, ये नाक, ये जो पांच ज्ञानेंद्रिय, ये पांच ज्ञानेंद्रिय अब हम कोई डिजाइन कर तो पैदा नहीं होते कि हाँ मेरी आंखें यहां पर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, इसका विजन इतना होना चाहिए, ये कान ऐसे होने चाहिए, इसका साइज इतना होना चाहिए, जब ध्वनि जाए तो कैसे। अब वो अगर उसका मैकेनिज्म बताना शुरू करें कि जब ध्वनि कान के अंदर जाती है तो वो ईयर ड्रम्स पे कैसे पड़ती है और वहां से फिर आपके नर्वस सिस्टम में आपको समझ में कैसे आता है कि मैं जो बोल रहा हूं, ये जो शब्द आपके ईयर ड्रम्स में कान के पर्दे के ऊपर गिरे, वो आपने ब्रेन से कैसे समझा और समझने के बाद आपकी प्रक्रिया क्या हुई। आप कई बार कुछ शब्द सुनते हैं, आंखें बड़ी होती कम होती है, आप मुस्कुराते हैं, आप कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी आप कुछ नहीं होते क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सारी प्रक्रिया, तो ये हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रिय है, ये पांच ज्ञानेंद्रिय ये किस प्रकार से ज्ञान हर समय अर्जित कर रही है। इस समय आपकी आंखें वो कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके कान कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपकी त्वचा, वो ये जो पंखे की हवा आपकी त्वचा के ऊपर लग रही है, कोई मच्छर आके बैठा तुरंत, आपको बिल्कुल कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, अपने आप आपका दूसरा हाथ जाएगा खुजलाने के लिए। कहीं ट्रेनिंग ली कहीं ये सबकी, तो देखिए ये पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ हम जो पैदा हुए हैं, ये हमें क्या क्या अलग अलग कार्य कराकर हमें लाभान्वित करती हैं ये ज्ञानेंद्रियां। मैं एक बार फ्लाइट में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि एक बहुत ही विचित्र प्रकार की बीमारी कई लोगों को हो जाती है, बहुत ही विचित्र है इसलिए बहुत कम लोगों में इस प्रकार की बीमारी देखी जाती है, उसका नाम है सिनेस्थेसिया। और ये बीमारी ऐसी है कि जो हमारी ये पांच इंद्रियां हैं और इनके जो फंक्शंस हैं ये मिक्सअप हो जाते हैं। इमेजिन करो कि इसके फंक्शंस मिक्सअप हो गए, तो कैसे, तो जो मरीज है इस बीमारी का, सिनेस्थेसिया बीमारी का, उसकी जिह्वा पर उसको शब्द के टेस्ट आते हैं। जैसे मान लो अभी ये प्रवचन चल रहा है और कोई अगर इस बीमारी का शिकार यहां पर अगर बैठा हो तो इस प्रवचन के जो अलग अलग शब्द उसके कानों में पड़ रहे हैं, उसके कानों में जो वो शब्द पड़ रहे हैं, वो जो उसको सुनाई दे रहा है, उसके साथ साथ उसकी जिह्वा को ये शब्द के टेस्ट स्वाद भी आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप, तो वहां पर एक ऐसे मरीज को उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, तो ये मरीज को ये प्रॉब्लम था, तो वो कभी खाते समय वो किसी ऐसे जहां पर आवाज हो रही है वो कभी खा नहीं पाता था, इसलिए खाने के लिए उसको साउंडलेस रूम में बैठना पड़ता था। जैसे मान लो कि वो खिचड़ी खा रहा है और कोई उससे बात कर रहा है, तो खिचड़ी का स्वाद तो जिसने बनाया है उस प्रकार का स्वाद होगा, परंतु वो जो कोई बातें कर रहा है उसने जो भी शब्द उसको कहे कैसे हो, तो वो कैसे हो का स्वाद उस खिचड़ी में मिक्स होकर उसको आता है उसके टंग पे, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कई शब्द हैं, उसको जब पूछा गया कि कुछ शब्द बोले गए उसको कि इसका स्वाद तुमको कैसा लग रहा है, इस शब्द का स्वाद कैसा लग रहा है, तो उसने कहा ये तीखा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है। तो मैं वही सोच रहा था देखते समय, इसको हरिनाम, इसको यदि हरिनाम सुनाया जाए तो ये हरिनाम का कैसा टेस्ट आएगा इसको। तो कई हैं जिनको जो शब्द हैं वो दिखाई देते हैं आंखों से, कई हैं वो टंग पर उसका स्वाद उनको आता है, तो ये जो मिक्सअप हो जाता है उसके वजह से वो बहुत परेशान जीवन जी रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा ट्राई करके देखते हैं ये इस प्रकार की बीमारी क्या एक्सपीरियंस होगा, परंतु वो लोग बहुत परेशान हैं इस बीमारी से, इसलिए वो बीमार बोले जाते हैं उनको। लेकिन स्वस्थ अवस्था में हमारी इंद्रियां जो हैं, जो मिक्सअप नहीं हुई हैं, आंखें जो हैं आंखों का काम कर रही है, कान जो है कान का काम कर रहे हैं, जिह्वा त्वचा इत्यादि, तो ये है यदृच्छा एक और उदाहरण। अब शारीरिक एवं मानसिक जो उपलब्धियां हैं, अब देखिए हम लोग सब जब पैदा हुए तो हाँ हमने बोलना सीखा, चलना सीखा, तो ये कुछ चीजें उसके लिए हमने इनिशियली प्रयास किया, परंतु एक बार वो प्रयास करने के बाद हमारे अंदर उसका जो प्रोग्रामिंग हो गया, जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो मैंने स्कूल में हिंदी भाषा सीखी, कल्पना करो कि हर रोज यदि हमें हमारी मातृभाषा या जो भी भाषा हम जानते हैं, हर रोज हमें सुबह पुराना सा फॉर्मेट हो गया, हर रोज सुबह हमें उसको सीखना पड़े, भाषा को सीखना पड़े, हर रोज चलना सीखना पड़े। जैसे मान लो कंप्यूटर में आप कुछ लेटर टाइप करते हो, ईमेल टाइप करते हो, आपके सेलफोन पर टाइप करते हो, तो वो प्रोग्राम्ड रहता है कि ये कलर होगा वाइट के ऊपर ब्लैक, उसका कलर होगा, ये उसका फॉन्ट होगा, ये उसका साइज होगा, वो फॉर्म। इमेजिन करो कंप्यूटर जैसे आपने टाइप किया, हर बार कंप्यूटर पूछे कौन सा फॉन्ट चाहिए, क्या साइज चाहिए, वो फॉन्ट का कलर कौन सा चाहिए, उसमें ग्रेडियंट चाहिए, उसमें फिलअप चाहिए, कलर फिल चाहिए, ये चाहिए, आप परेशान हो जाएंगे। अरे भाई जो ऑलरेडी सेव्ड है तुम उसको फॉलो करो। वैसे ही ये जो हमारी शारीरिक और मानसिक उपलब्धियां हैं, कि मैं कोई यहां पर सोच के नहीं आया कि अगला शब्द क्या होने वाला है, तो ये एक मानसिक उपलब्धि है कि अगला शब्द जो मैंने इतने सालों से सीखा है, और आप जो सीखकर बैठे हुए हो, तो देखो दोनों की ये उपलब्धियां होना जरूरी है। मेरे अंदर ये उपलब्धि कि ये जो भाषा में बोल रहा हूं, ये भाषा का व्याकरण, इसके शब्द, इसके जो वाक्यों की बनावट, वो सब जो सीखी हुई है जो मैं बोल रहा हूं, और आपने भी ये सब सीखा हुआ है, इसलिए आप समझ पा रहे हो, है कि नहीं? नहीं, तो यदि मैंने कहा शारीरिक एवं मानसिक, तो आप जानते हो कि शारीरिक और मानसिक का अर्थ क्या है। अब मुझे उसमें जाके डिटेल में बताना नहीं, शरीर मतलब ये जिसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, आंखें होती, नहीं, वो सब आप समझ गए। तो ये उपलब्धि है, इसको भी क्या कहेंगे, यदृच्छा। अब ये पूरी प्रकृति जिसके अंदर हम जी रहे हैं, तो यहां पर भगवान की प्रकृति द्वारा जो सुरक्षा हमें प्राप्त है, जब हमें ये शरीर श्वास लेने के लिए, हमने उस श्वास का उदाहरण लिया, श्वास लेने के लिए प्रेरित करता है, तो प्रकृति हवा उसके लिए तैयार कर दी है। जब हमें प्यास लगती है तो उसके लिए जल है, भूख लगी है तो उसके लिए अन्न है, फल है, तरकारी है, इत्यादि इत्यादि। जैसे एक जापान में एक घटना हुई बहुत साल पहले एक घर में, तो जापान के जो घर होते हैं वो, क्योंकि वहां पर भूकंप बहुत आते हैं, तो जापान के घर ज्यादातर वो कार्डबोर्ड के और लकड़ी के होते हैं, तो एक घर में वो किसी को बेचा गया, तो जो नया ग्राहक उस घर में आया तो उसने देखा कि एक पेंटिंग टंगी हुई थी जो पिछले मालिक थे उनकी, तो उन्होंने वो पेंटिंग निकाली, जो पेंटिंग निकाली तो देखा कि जो कील ठोकी गई थी वो कील में एक छिपकली अटकी हुई थी, एक छिपकली अटकी हुई थी। तो जब वो कील ठोकी गई थी उस समय फिर पता लगाया गया कि वो छिपकली कितने कुछ 5-6 वर्षों से वो कील के वजह से ठुकी हुई, अटकी हुई उस तस्वीर के पीछे थी। तो फिर इन्होंने पता लगाया कि इसे खाना कौन खिला रहा था। अरे अगर कोई कील से अटकी हुई वो छिपकली, वो चिल्ला के बोल तो नहीं सकती थी कि मैं यहां पे अटकी हुई, तो उसको खाना कौन खिला रहा था, वो जी कैसे रही थी इतने सालों से। तो फिर वैज्ञानिकों को जब बताया गया तो वो लोग आए, वो लोग ने चेक किया, चेक करने पर उनको पता चला कि रोज एक दूसरी छिपकली आती थी खाना लेकर, जो भी उनका खाना होगा, कॉकरोच कोई मच्छर ये वो सब लेकर मुंह में, और इसको खिलाती थी, मतलब जैसे कि टिफिन लेकर आती थी इसको खिलाती थी और ये छिपकली उतना खा के फिर वो चली जाती। ऐसे 5 साल तक ये छिपकली वहां पर वो कील से अटकी हुई। तो प्रकृति ने वहां पर भी उसको बिना उसके किसी प्रयास के, पॉइंट कौन सा चल रहा है वो ध्यान रखिए आप, यदृच्छा। तो भगवान की जो प्रकृति है उसके द्वारा सुरक्षा, जिसका हमें अधिकांश समय कुछ ज्यादा भान नहीं रहता, परंतु हम सुरक्षित जो भी जीवन जी पा रहे हैं इस भगवान की प्रकृति में, वो एक अपने आप में अजूबा। तो यदि अब हम इस पूरे 2 शब्दों को ले, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, तो भगवान कह रहे हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान सिखा रहे हैं हमें कि संतुष्टि, और वो भी किस प्रकार की संतुष्टि, कि जहां पर हमें स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास किए जो वस्तुएं उपलब्ध कराकर दी गई हैं। अब इसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे कि जब भगवान ये कह रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, तो फिर ये प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है, क्या हमारे सुख दुख फिर पूर्व निर्धारित हैं? यदि भगवान की प्रकृति और ये जो हमें शरीर इस प्रकृति के अंदर दिया गया है, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा बना हुआ है, तत्वों के द्वारा बना हुआ है, तो क्या हमारे सुख दुख भी फिक्स्ड हैं? तो हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, आज के श्लोक के अनुसार सारा प्रयास बंद कर दीजिए और फिर निष्क्रिय हो जाओ। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। तो इसलिए ये जो प्रश्न है इसको यदि और थोड़ा विस्तारित करें, यदि बिना प्रयास किए वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, तो मनुष्य को सुख प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं? जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि कई ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा, न किसको मिला है न कभी मिलेगा। तो बहुत बार लोग इस सिद्धांत को कहते हैं कि यदि तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा है तो वो तुम्हें मिलना ही है, और यदि नहीं लिखा तो तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो फिर कोई कहे तो फिर प्रयास ही क्यों करें सुख प्राप्ति का? बहुत से जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत में कन्वर्जन्स कर रहे हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं, तो वो लोग ये पॉइंट यूज करते हैं। वो क्या कहते हैं, इन यू हिंदूज यू हैव नो सेंस ऑफ सोशल जस्टिस। वो ये सिद्धांत यूज करते हैं, यू हैव नो सेंस ऑफ सोशल जस्टिस। कैसे उसको बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, दैट इफ समबडी इज बॉर्न हैंडीकैप यू से इट्स द कर्मा, समबडी इज बॉर्न विद सम डिजीज, या किसी नीचे जाति में पैदा हुआ, यदि गरीब पैदा हुआ है, कोई अमीर पैदा हुआ है, तो वो कहते हैं कि आप लोग ये बोल देते हो कि उसके कर्म हैं जिसके वजह से वो पैदा हुआ है और भुगतो। तो ऐसे बोलकर फिर वो उसको, मुझे एक ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो सबसे पहले मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा कि आपके क्रिश्चियन फिलॉसफी के अनुसार या क्रिश्चियन थियोलॉजी के अनुसार जो एडम और ईव, आदम जिसने वो सेब खाया था, फॉरबिडन एप्पल खाया था, तो आप लोगों का उनके अनुसार ये है कि उसने जब वो फॉरबिडन एप्पल खाया, वो सेब खाया जो उसको नहीं खाना चाहिए था, शैतान ने वो प्रस्तुत किया था, शैतान अर्थात माया देवी ने प्रस्तुत किया था, और वहां से वो जो पाप है वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। तो मैंने कहा तुम भी तो वही बोल रहे हो कि वो वहां से किसी ने वो सेब खाया उसके वजह से हम पापी पैदा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अब प्रश्न ये है, हम श्वास की बात कर रहे थे, प्रश्न ये है क्या हमारे श्वास फिक्स्ड हैं? लोग बोलते ना सांसें गिनी हुई है, सबकी गिनी हुई सांसें, हमें नहीं पता कितनी हैं, लेकिन योर ब्रेथ्स आर काउंटेड एंड गिवन टू यू, आर ब्रेथ्स फिक्स्ड? क्या कहोगे आप? अगर ऐसा होता तो वही वेद आयुर्वेद क्यों प्रस्तुत करता? आयुर्वेद क्या है? वो वेद जहां आप आपकी आयु बढ़ा सकते हो, उसको फॉलो कर आयु बढ़ा सकते हो। तो आयु बढ़ाना मतलब श्वास को बढ़ाना, तो फिर कैसे समझा जाए कि हमारी श्वासें फिक्स्ड है? अच्छा, अगर इसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई कहे कि आपके जीवन का जितना सुख है वो फिक्स्ड है, वो आपके नसीब के अनुसार आपको जो मिलना है मिलेगा, चाहे आप उसको प्रयास करें या ना करें आपके पास आएगा, तो ठीक है। अगर ये कहें कि प्रयास करने से भी सुख बढ़ने नहीं वाला, जो मेरे नसीब में उतना ही मुझे मिलने वाला, जो मेरा कोटा है उतना ही मुझे मिलने वाला है, तो मैं अगर ये प्रश्न पूछूं कि जो दुख है क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं? अगर सुख फिक्स्ड है तो दुख भी फिक्स होना चाहिए ना, क्या दुख को बढ़ा सकते हैं? अभी हम लोग सब यहां पर बैठे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत दुख होगा, शारीरिक मानसिक इस समय बैठे हुए हमारे अंदर थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन आप प्रयास कर उस दुख को बढ़ा भी सकते हो। अच्छे भले आप कुर्सी पे बैठे हो, थोड़ा सा दुख होगा, हो सकता है कि कुर्सी थोड़ी छोटी होगी, कंफर्टेबल नहीं होगी, अचानक आप कुर्सी से कूद के नीचे, कुर्सी से ऊपर उछल के नीचे कूद जाओ, तो कोई कहे नहीं वो फिक्स्ड मेरा दुख था लेकिन मैंने बढ़ाया अभी उस दुख को, है ना। किसी को डायबिटीज है और वो मिठाई पे मिठाई खाए जा रहा है, तो जो ऑलरेडी उसके पास दुख हैं उसको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? सो वी कैन इंक्रीज आर डिस्ट्रेस, वी कैन इंक्रीज आर दुख। जैसे वो एक इंसिडेंट है, प्रभुपाद चरणामृत लिए गुरु पूजा के समय एक मंदिर में, और चरणामृत में नमक था शक्कर के बदले या शहद के बदले, तो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है? तो वो जो डिवोटी प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद कृष्णाज मर्सी, प्रभुपाद ने कहा दैट इज नॉट कृष्णाज मर्सी, दैट इज योर स्टुपिडिटी, तुम्हारी मूर्खता है वो। तो कई बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग अमेरिका में उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय अपनी गाड़ी वैन निकालते थे तो स्पीड लिमिट ब्रेक करते हुए जाते थे, क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में हम जा रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल है, कुछ नहीं होने, तो एक ऐसे वैन का एक्सीडेंट हुआ, उसमें से बुक डिस्ट्रीब्यूटर उस एक्सीडेंट में खत्म हो गए। प्रभुपाद के पास जब ये रिपोर्ट गई तो प्रभुपाद को जब पूछा गया कि प्रभुपाद व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर डेथ, दे वर गोइंग टू सर्व इन द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, डिड इट हैपन बिकॉज और अंडर द सुपरविजन एंड सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड? प्रभुपाद बोले नो, इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर इरिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रभुपाद के डिसाइपल हैं अमेरिका में, वो ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं, ड्राइविंग कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो उनका एक रूल है, वो लिखते हैं, डिवोटीज जब उनसे सीखने आते हैं उनको बोलते हैं वो, व्हेनेवर यू ब्रेक द स्पीड लिमिट्स कृष्णा लीव्स योर कार, व्हेनेवर यू ब्रेक द स्पीड लिमिट्स कृष्णा लीव्स योर कार, मतलब देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन। तो यदि हम देखें भगवद गीता में भगवान ने बोल दिया दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार दुखालय है अशाश्वत है। अब अर्जुन प्रथम अध्याय में दुख में थे, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, रो रहे हैं, दुखी हैं, शोक अवस्था में हैं। तो क्या भगवान अर्जुन को उस समय बोले तुमको साक्षात्कार हो गया, तुम दुखी हो और मैंने क्या बोला है गीता में और जो मैं बोलने वाला हूं आगे, दुखालयम अशाश्वतम, गुड, बहुत अच्छा? नहीं, भगवान ने, अर्जुन दुखी थे, भगवान बोले हैं इस भौतिक संसार का स्वरूप है ये दुखालय है, परंतु पूरी भगवत गीता भगवान ने सुनाई ताकि अर्जुन उस दुख से ऊपर उठे, प्रयास किया। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट का अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास छोड़ दो, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। अब इसको समझने के लिए हमें हमारे जो विभिन्न स्तर के कर्म हैं उसको पहले जानना होगा। तो सबसे पहले स्तर है जिसको कहते हैं संचित कर्म। तो एक उदाहरण से अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो एक पानी की टंकी है, बड़ी पानी की टंकी है, और उस पानी की टंकी में ऑलरेडी पानी है। तो जो ऑलरेडी पानी है वो क्या है? हमारा संचित कर्म। इतने जन्मों से जो जो हमने इस टंकी में कर्म रूपी पानी भरा है वो इस टंकी में है। इसके पश्चात जो दूसरे स्तर का कर्म होता है हमारे द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं आगमी कर्म या क्रियमाण कर्म। आगमी और क्रियमाण क्या है? अभी आप जो पानी डाल रहे हो इस टंकी में, एक तो पहले से टंकी में पानी था, अभी आप जो पानी डाल, अभी जो आप कर्म कर रहे हो उसको कहेंगे आगमी या क्रियमाण कर्म। फिर प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म होता है कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके लिए, आपके संचित कर्म के वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको बोलेंगे प्रारब्ध कर्म। और अप्रारब्ध कर्म अर्थात कि अब आगे जो कर्म के वजह से सिचुएशंस आएगी आपके जीवन में, जैसे मान लो कि आपको यहां से मुंबई जाना है, तो मुंबई के लिए आपने कार ली, तो कार जो है वो आपका प्रारब्ध कर्म हो गया। तो कौन, जो भी कार होगी, चाहे मारुति होगी या किसी की स्कोडा होगी, किसी की बीएमडब्ल्यू होगी, जो भी कार होगी, तो वो आपका प्रारब्ध कर्म हो गया। अब रास्ते में आपको ट्रैफिक मिले, बारिश हो जाए या जो भी तकलीफें अगर हो उसको कहेंगे अप्रारब्ध कर्म। तो यहां पर ये सब हम क्यों आपके सामने रख रहे हैं कि ये सब का जो कॉम्बिनेशन है इसके द्वारा हमारा अभी का वर्तमान जीवन जो हमें दिख रहा है वो है संचित कर्म, आगमी, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो अब कोई पूछे कि भाई इसके अंदर फिर संचित और प्रारब्ध अप्रारब्ध ये सब फिक्स्ड लग रहे हैं, केवल आगमी कर्म जो है, तो आगमी कर्म क्या है? अगर उस टंकी में पानी पहले से था तो कहां से आया पानी? कभी तो हमने आगमी कर्म किया होगा ना पानी डालने के लिए, किसी ने तो बिना कारण तो पानी आया नहीं कहीं से। तो इसलिए ये सब का जो इंटर कनेक्शन है, इन चार स्तर के कर्मों का जो इंटर कनेक्शन है वो समझना जरूरी है। इसलिए ये सब का निचोड़ यदि हम इन दो में लें, सुख और दुख, तो एक है हमारे कर्म और एक है अब हमारा धर्म। तो हमारे कर्मों के वजह से जो हमें स्थिति अभी प्राप्त हुई है उसके पश्चात क्या धर्म हमें करना है। जैसे कि जब माता सीता का अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी नहीं बोले वो तो कर्म होगा सीता का, अब क्या कर सकते हैं, उसने कुछ पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया होगा, किसी को अगवा कर ले गई होगी, उसका परिणाम मिल रहा है, भुगतने दो, चलो लक्ष्मण हम चलते हैं वापस। नहीं, उन्होंने अपना धर्म निभाया, पति का धर्म निभाया। हाल ही में बहुत ही विचित्र प्रकार का इंटरप्रिटेशन मैंने सुना 18.66 श्लोक के ऊपर। 18.66 जो कि हम बहुत कोट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच। तो किसी ने इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है, भगवान श्लोक का ट्रांसलेशन क्या है, भगवान कह रहे हैं कि तुम सब धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, घबराओ मत। ये ट्रांसलेशन है श्लोक का। किसी बंदे ने इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया है, भगवान बोल रहे हैं गीता में कि पाप करते रहो धर्म छोड़ो। देखो किसी की बुद्धि कहां तक जा सकती है, कुबुद्धि। भगवान बोल रहे हैं धर्म छोड़ो, धर्म का पालन करना छोड़ो, पाप करते रहो वो संभाल लेंगे। कितना अच्छा लगता है सुनने। इसको कहते हैं तोड़ मरोड़ कर अर्थवाद करना, भगवान के शब्दों पर अर्थवाद करना। तो अब हम इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे कि साधारणतः ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अध्यात्म का पालन करते हैं, जैसे कि आज के श्लोक में भगवान ने कह दिया कि संतुष्ट रहो, यदृच्छ लाभ संतुष्ट, सैटिस्फाइड रहो अपने जीवन से, लेकिन आजकल का जो आधुनिक मनुष्य है, मॉडर्न मैन, जिसको महत्वाकांक्षी बनना है, एम्बिशियस बनना है, तो उनको बोला जाता है कि तुम कभी ये स्पिरिचुअल और रिलीजन को फॉलो मत करो, क्योंकि यहां पर क्या सिखाया जाता है, अरे संतुष्ट रहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, संतुष्ट रहो। सो मेनी टाइम्स बीइंग एम्बिशियस रिक्वायर्स टू बी डिससैटिस्फाइड, इट गोज अगेंस्ट सैटिस्फैक्शन, एंड दे से इफ यू आर सैटिस्फाइड यू कैन नॉट बी एम्बिशियस। जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर असंतुष्टि होगी उतना ज्यादा तुम प्रयास करोगे और हासिल करने की चीजों को। लेकिन यहां पर हमने तीसरी चीज को इंक्लूड किया है और वो है डिवोशन। तो इसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे, इफ यू हैव डिवोशन देन दैट डिवोशन विल इंक्लूड एम्बिशन एंड विल इंक्लूड सैटिस्फैक्शन बोथ। कैसे डिवोशन के अंदर इन दोनों का समन्वय है, इन दोनों को रिजॉल्व किया हुआ है डिवोशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लेंगे एम्बिशन वर्सेस सेटिस्फैक्शन। तो एक रिसर्च के अनुसार वेस्टर्न एक फिलोसोफर, उन्होंने कई वर्षों का ह्यूमन साइकी को रिसर्च करते हुए, स्पेशली 21st सेंचुरी के मनुष्य को रिसर्च करते हुए, वो इस कंक्लूजन पर आए हैं कि दो प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं। अब हम लोग सब बोलेंगे ना कि क्या है उपभोक्ता, अलग अलग प्रकार का भोग हम ग्रहण करते हैं अलग अलग हमारे शरीर को चलाने के लिए, तो उपभोक्ता कहेंगे, तो कंज्यूमर नाम यूज कर रहा है। तो एक कहते हैं उनको मैक्सिमाइजर्स और दूसरों को कहते हैं ऑप्टिमाइजर्स। तो मैक्सिमाइजर्स कौन से लोग होते हैं, वांटिंग नथिंग बट द बेस्ट। जैसे कि यदि किसी को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, मान लो कि उसको कोई कंप्यूटर खरीदना है या फोन खरीदना है, तो जो सबसे बेस्ट है उसके नीचे मैक्सिमाइजर्स जो हैं कभी कोई चीज को कंसिडर ही नहीं करते, हर समय एवरीथिंग शुड बी बेस्ट। अच्छा, यहां पर जो एनालिसिस है ये केवल किसी प्रोडक्ट को खरीदने का नहीं है, आगे चलकर इसका एनालिसिस होता है इवन ह्यूमन रिलेशनशिप। जो मैक्सिमाइजर्स ह्यूमन रिलेशनशिप में होते हैं, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग सबस्टैंडर्ड, उनके लिए उसमें भी एवरीथिंग शुड बी मैक्सिमाइज्ड। ऑप्टिमाइजर्स जो होते हैं, दे डिराइव द बेस्ट फ्रॉम द अवेलेबल, वो उसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते कि तुम अगर कोई प्रोडक्ट लेना है तो उस प्रोडक्ट में घंटों घंटों तक कि कौन सा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में बेस्ट मार्केट में है, द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, वो उनका प्रयास क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है चाहे वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी क्यों ना हो, उसके अंदर ना मिले उनको उसका पूरा वर्थ ना मिले, परंतु उसके अंदर जो बेस्ट फीचर है वो उसमें से निकालकर उसमें सैटिस्फाइड रहते। तो अब ये दोनों जो श्रेणी के लोग हैं, मैक्सिमाइजर्स और ऑप्टिमाइजर्स, तो इसके अंदर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं एम्बिशियस एंड बी सैटिस्फाइड। तो जो मैक्सिमाइजर्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ अब मैंने पूरा रिसर्च कर मेरे अनुसार जो बेस्ट अवेलेबल है वो मैंने लिया, बट होता क्या है कि कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट जो है, जो कि इतना दावा दिया था कि ये दे देगा वो दे देगा, जब वो यूज करना प्रारंभ करता है तब उसके पता चलता है अरे यार। जैसे कि मान लो कि कोई शादी में गया है और उसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और अफवाह फैला दी किसी ने कि गुलाब जामुन अवेलेबल है और वो भी बड़े वाले, तो जो मैक्सिमाइजर्स होते हैं ना वो पहले तो डेस्परेट हो जाएंगे अभी उसको हासिल करने के लिए, और फिर सेकेंड लेवल है कि जब वो गुलाब जामुन उनको मिल जाता है पूरे प्रयास से ढूंढ के यहां वहां से उनको मिल गया वो गुलाब जामुन, मिलने के बाद जब उनको समझ में आता है अरे ये तो कच्चा है मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है गुलाब जामुन, और फिर तीसरा लेवल क्या होता है कि उनको गुलाब जामुन मिला और अच्छा मिला उनके टेस्ट के अनुसार मिला, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, एक खाया दो खाया तीन खाया 10 खाया 20 खाया उसके बाद में फिर और खाएंगे नहीं नहीं अभी आप खाइए। तो प्रकृति ने किस प्रकार से डिजाइन किया है, या तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं हुआ तुम्हारे अनुसार हुआ तुम डिफेक्टिव बन जाओ। तो सेकंड प्रॉब्लम मैक्सिमाइजर्स की श्रेणी वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इन परसुइंग द बेस्ट दे निग्लेक्ट देयर लव्ड वंस, कि जो बेस्ट लेना है मेरे जीवन में वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, लेकिन उस जद्दोजहद में जो उसकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जहां पर उसको जो प्राप्त हो सकता है उसको निग्लेक्ट करता है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली जो कंज्यूमर होता है किसी प्रोडक्ट का, वो मैक्सिमाइज कर एक प्रोडक्ट उसने खरीद लिया और मार्केट में 6 महीने बाद मार्केट का स्वरूप क्या है कि वो लोग नया प्रोडक्ट लाकर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जैसे ही अब नया प्रोडक्ट लाकर प्रस्तुत किया तो इसके अंदर इनसिक्योरिटी और फियर। तो एक बंदा गया भगवान के पास कि ऐसी बीवी जो सुंदर हो, घरेलू हो, खाना बनाना जानती हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, ससुराल में सबके साथ बना कर रखे, ऐसी पत्नी को क्या कहते? भगवान ने बोला, तेरे मन का वहम। नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज इम्परफेक्ट, नो प्लेस, नो सिचुएशन, नो पर्सन, नो ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट और एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट। तो जो ऑप्टिमाइजर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट। जो पति मिला है, जो पत्नी मिली, निभाओ, खुश रहो उनके साथ, अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ खुश रहो। होगा बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगी, उसके बाद में यूज करने के बाद डिफेक्टिव पीस और डिफेक्ट्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, खास करके हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया के अंदर सालों साल उनकी शादी चल रही है, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, वेस्ट में बहुत मुश्किल है, वो लोग जब सुनते हैं 45 इयर्स मैरिज, और सबसे बड़ा क्वेश्चन शॉकिंग उनको क्या रखता है, विद द सेम पर्सन, वो बोलना जरूरी है, विद द सेम पर्सन, सो दे मेक इट द बेस्ट यूज ऑफ दैट, दे यूज प्रोडक्ट्स टू लव पीपल। यहां पे प्रोडक्ट खाली हम ये मत समझिए, जो भी साधन है, जीवन के साधन है, उसका इस्तेमाल करते हैं किसी बड़े ऊंचे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। एंड दे बिलीव इन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन रादर देन अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। सो सबसे बड़ा डिफरेंस मैक्सिमाइजर्स और ऑप्टिमाइजर्स का क्या है? मैक्सिमाइजर्स आर इन टू कॉम्पिटिशन and optimizers are into cooperation and contribution. तो आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे इसके संदर्भ में आज।
Mm-hmm.
कहते हैं सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ तब हुई जब उसके बाद भी मैं जी गया। तो इस संसार में जब इस प्रकार का स्पर्धात्मक जीवन लोग जीते, यहां पर यहां बताया गया है कि एक है सहकार्य का जीवन, लाइफ ऑफ कोऑपरेशन, और एक है कॉम्पिटिशन, स्पर्धात्मक जीवन। तो आजकल ये जो सिखाया जा रहा है, अब देखिए कॉम्पिटिशन में कोई बुराई नहीं है, जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, एक है हेल्दी और एक है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। तो इसमें दोनों में यदि वृद्धि या ग्रोथ, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो एक जिसको होलिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, कि जहां हम एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़े, जैसे कि उन दो बिल्लियों ने किया। लेकिन एक और ग्रोथ, उसको भी ग्रोथ बोलते हैं, और वो है कैंसरस ग्रोथ। तो ये कैंसरस ग्रोथ क्या है, जैसे कि हमारे अंदर, सबके अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो उनके अंदर पोटेंशियल है कैंसरस बनने का, या कई बार वो कैंसरस होते भी हैं, लेकिन जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ते हैं वो फिर जानलेवा हो जाते हैं। तो जो होलिस्टिक ग्रोथ है वो कंस्ट्रक्टिव है और प्रोपोर्शनेट है, और इसका ऑपोजिट जो कैंसरस ग्रोथ है, जब वो कैंसर के कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्प्रोपोर्शनेट। एक यूएस में एक टीनेजर 15-16 साल का लड़का, उसको अचानक एक ऐसी विरासत प्राप्त हुई, उसकी दादी ने उसको ये विरासत, जब दादी गुजरी तो उसकी दादी जो उसकी माँ थी, मतलब दादी की जो बेटी और इस लड़के की माँ, उसके साथ जमते नहीं थे उनका, लेकिन अपने पोते के साथ दादी का बहुत जमता था, नानी का। तो नानी गुजरने के बाद उसने वसीयत में अपने पोते को $1,000,000 ये विरासत में दे दिया। $1,000,000 तकरीबन 6 करोड़ रुपए। और ये सच्ची घटना है, ये लड़के ने एक साल में 6 करोड़ उड़ा दिए ड्रग्स में उड़ा दिए 6 करोड़ एक साल में ड्रग्स में उड़ा दिए इसने। और जो ये 6 करोड़ मिलने से पहले उसके पास जो उसकी खुद की सेविंग्स थी, जो भी उसने थोड़ी बहुत सेविंग्स करके रखी थी, वो सेविंग्स कुल मिलाकर $200 था। तो वो $200 उसने निकाला, अब इतना वो ड्रग एडिक्ट बन गया था, तो वो $200 निकाला और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है वहां गया, वो $200 दिया, और फिर अपने वो लत जो उसको ड्रग्स की थी, उस लत से बाहर निकला वो और डिवोटी बना। आज वो एक इस्कॉन का इनिशिएटेड डिवोटी है। तो फाइनली उसको काम क्या है, वो $200 जो उसने बचा कर रखा था, यदि कहें तो उसके नसीब में वो $200 थे उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए। उसको 6 करोड़ मिले और उस 6 करोड़ एक साल में उसका जीवन बद से बदतर कर दिया। अब साधारणता कोई आपको कहे कि आपको अगले साल 6 करोड़ मिलने वाले हैं और उसके बदले में आपके पास ₹200 आपके गुल्लक में, आप क्या, किसके ऊपर ध्यान दोगे, है ना, ऑब्वियसली आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ, 6 करोड़ पर। लेकिन इस बंदे के जीवन में वो जो $200 वो उसको सही मार्ग पर ला पाए। तो फाइनली यहां पर ये पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट यहां पर ये है कि जो ग्रोथ है वो हमें हमारे प्रयास से करना है, होलिस्टिक ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन वही जब डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से किया जाएगा, हम हमारे अगले सेटिंग में इसको और इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है और जो कंपटीशन इन थ्री मोड्स होता है और ये जो मैक्सिमाइजर्स है ऑप्टिमाइजर्स है, ये दोनों इस संसार में समाज के अंदर अपना अपना कैसा योगदान दे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा योगदान दे रहे हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु आज का जो संक्षिप्त रूप में टेक होम मैसेज ये है कि ग्रोथ जो है वो हमारे प्रयास से होगी। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया कि क्या हमारे सुख और दुख पूर्व निर्धारित हैं, हमारे ऊपर है कि हम उसे होलिस्टिक ग्रोथ में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसे हम कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जैसे कि संचित कर्म, आगमी, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म, ये सब का जो समन्वय है उसके द्वारा हमारा जो वर्तमान जीवन है और ये वर्तमान जीवन के पश्चात जो हमारा भविष्य का जीवन होने वाला है वो निर्भर करता है। तो इन सब को समझते हुए भगवान के प्रति भक्ति, अभी हमने उसको कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि डिवोशन जो है भगवान के प्रति वो आपको सही मायने में एम्बिशियस बनाएगा, और सही मायने में आपको उस एम्बिशियस होने के साथ साथ सैटिस्फाइड रखेगा। सो दैट इज द मोस्ट हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग सैटिस्फाइड बाय बीइंग इन डिवोशन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
श्रीमान शिक्षा अष्टकम।